आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
आप सुन रहे हैं SBS Hindi मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर।
शुक्रवार 10 अप्रैल 2026 का दिन और SBS के हिंदी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आपको अनीता बरार का नमस्कार। सबसे पहले कि आज हम जिस भूमि से इस कार्यक्रम का प्रसारण कर रहे हैं उसके पारंपरिक उत्तराधिकारियों को स्वीकार करते हैं। SBS हिंदी कुल राष्ट्र के वारंजरी लोगों, उनके अतीत और वर्तमान के बुजुर्गों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता है। हम उन सभी मूल निवासियों और टॉरस स्ट्रेट आइलैंड के पारंपरिक उत्तराधिकारियों को भी स्वीकार करते हैं जिनकी भूमि से आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। आइए श्रोताओं, आपको बताती चलूं कि आज के इस कार्यक्रम में आपके लिए क्या क्या सामग्री जुटाई है। मेरे लिस्ट में संकट के चलते फ्यूल की कीमतों पर एक रिपोर्ट रहेगी, नेशनल इंडियन फेस्टिवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इसकी जानकारी भी आपको देंगे, भारत के समाचार तो आप सुनेंगे ही, और हाँ अगर समय रहा तो भारत के किसी जगह के बारे में भी बात करते चलेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले न्यूज फ्लैश। नमस्कार, शुक्रवार 10 अप्रैल के लिए यह न्यूज फ्लैश और मैं हूँ अनीता बरार। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वॉन्ग ने प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीसी के साथ एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑस्ट्रेलिया को फ्यूल एक्सपोर्ट पर रोक लगाने से मना कर दिया है। एंथनी अल्बनीसी का कहना है कि उन्होंने और प्रधानमंत्री वॉन्ग ने आपसी एनर्जी सिक्योरिटी की रक्षा करने और देशों के बीच फ्यूल और LNG के फ्लो को सपोर्ट करने के लिए एक ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन किए हैं। दोनों नेताओं ने हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने की मांग की है और कहा है कि एनर्जी संकट से निपटने का सबसे अच्छा तरीका मिलकर काम करना है। ये पूछे जाने पर कि अगर सिंगापुर एक्सपोर्ट पर रोक लगाता है तो क्या ऑस्ट्रेलिया को प्राथमिकता दी जाएगी, वॉन्ग ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। फ्यूल संकट की वजह से 80% से अधिक ऑस्ट्रेलियाई बिजनेस को अधिक ऑपरेटिंग कॉस्ट का सामना करना पड़ रहा है। ऑस्ट्रेलियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अपने मेंबर ब्रांच के जरिए एक सर्वे किया जिसमें 2300 जवाब इकट्ठा किए। ऑस्ट्रेलियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के CEO एंड्रू मैककेलर का कहना है कि अगर फ्यूल संकट जारी रहता है तो इसका असर और भी बड़ा होगा। न्यू साउथ वेल्स की रोड मंत्री जेनी एचसन का कहना है कि ग्रेट वेस्टर्न हाईवे 3 महीने से अधिक समय तक बंद रहेगा जब तक सरकार स्ट्रक्चरल कमियों को ठीक नहीं कर लेती। ये सड़क जो सिडनी को सेंट्रल वेस्ट न्यू साउथ वेल्स से जोड़ती है मार्च में दरारें मिलने के बाद से विक्टोरिया पास पर बंद है। पहले इसके 3 महीने तक बंद रहने की उम्मीद थी लेकिन अब एचिसन का कहना है कि ये बदल सकता है क्योंकि सरकार समाधान खोजने में मदद के लिए विशेषज्ञों की सलाह ले रही है। ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स के प्रमुख ने उन बातों को गलत बताया है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने पुराने बेड़े की वजह से मिडिल ईस्ट में नेवी का जहाज नहीं भेजा है। एडमिरल डेविड जॉनस्टन का कहना है कि उन्हें भरोसा है कि ऑस्ट्रेलिया के पास हॉर्मुज स्ट्रेट में जंगी जहाज को भेजने की सामर्थ्य है लेकिन ये एक प्राथमिकता का सवाल है। पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबट इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है कि ईरान में सैनिक न भेजकर ऑस्ट्रेलिया अपने मूल्यों के साथ धोखा कर रहा है। विपक्ष और कुछ डिफेंस एनालिस्ट्स ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने जहाज इसलिए नहीं भेजा क्योंकि उसके पास ऐसा करने के लिए सामर्थ्य नहीं है। लेकिन कार्यकारी प्रधानमंत्री रिचर्ड माल्स ने चैनल 9 को बताया कि सामर्थ्य कोई मुद्दा नहीं है। म्यांमार के नए राष्ट्रपति मिन ऑंग हलाइंग का कहना है कि उनकी नई सरकार इंटरनेशनल रिलेशन को बेहतर बनाने और साउथ ईस्ट एशियाई ब्लॉक यानी एशियान के साथ रिश्ते सामान्य करने की कोशिश करेगी। पूर्व जुंटा चीफ ने अब औपचारिक रूप से म्यांमार के राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। पार्लियामेंट में अपनी स्पीच में उन्होंने कहा कि शांति और डेमोक्रेसी उनकी प्राथमिकता है और वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना चाहते हैं। और एनडीटीवी से मिले समाचार के अनुसार भारत में इसरो ने दूसरा इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट सफलता से पूरा किया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने इसरो को बधाई देते हुए बताया कि गगनयान मिशन के लिए ये एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत भी जल्द उन देशों में शामिल होने जा रहा है जो मानव को स्पेस में भेजने और वहां से सुरक्षित वापस लाने में सक्षम है। इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन पर हुआ। अन्य समाचारों और समुदाय के समाचारों के लिए आप हमारी फेसबुक और हमारे वेब पेज sps.com.au/hindi से जुड़े रहें। न्यूज फ्लैश समाप्त हुआ। और श्रोताओं, न्यूज फ्लैश के बाद बात फ्यूल की। अब मिडिल ईस्ट में जारी संकट और तेल के संकट के बीच में भले ही सीजफायर की घोषणा तो हो चुकी है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से टैंकर्स की आवाजाही अभी भी प्रभावित हो सकती है और हो रही है। इसका असर ऑस्ट्रेलियाई वाहन चालकों और ट्रक ड्राइवर्स के लिए फ्यूल्स की कीमतों पर पड़ रहा है। अब विशेषज्ञों का कहना है कि कीमतों में राहत तुरंत तो नहीं दिखेगी और इसका असर लंबे समय तक रह सकता है। तो इसी पर है ये रिपोर्ट जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं नबील हसन।
मिडिल ईस्ट में दो हफ्तों के लिए सीजफायर की घोषणा के बाद जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऑयल सप्लाई के मार्ग को खोलने वाला था, अब हालात थोड़े चुनौतीपूर्ण दिख रहे हैं। कुछ हमलों और तनाव के बाद इसकी स्थिरता पर सवाल उठने लगे हैं। फिर भी इस सीजफायर से पेट्रोल पंप पर वाहन चालकों को थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन चाहे सीजफायर पर अमल हो या ना हो, फ्यूल की कीमतों में कमी आने में समय लग सकता है और ग्लोबल मार्केट्स में हुई हलचल का असर लंबे समय तक महसूस किया जा सकता है। सरकार लोगों से शांत रहने की अपील कर रही है और कह रही है कि फ्यूल सप्लाई मई तक सुरक्षित है, साथ ही इंटरनेशनल पार्टनर्स से सप्लाई मजबूत करने पर काम किया जा रहा है। SBS हिंदी पर मैं हूं नबील हसन। कई क्षेत्रों में पुलिस फ्यूल की चोरी में तेज बढ़ोतरी को लेकर चेतावनी दे रही है, क्योंकि फ्यूल के संकट का असर अब लोगों तक पहुंच रहा है। हालांकि कीमतों में राहत मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच एक अस्थायी दो हफ्ते का सीजफायर हुआ है, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बमबारी की अपनी धमकी को फिलहाल रोक दिया। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने डोनाल्ड ट्रंप की उस टिप्पणी की आलोचना की है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ईरान ने कोई समझौता नहीं किया तो पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी।
I don't think it's appropriate. The potential of damage to civilian infrastructure in Iran was an extraordinary statement to make.
लेकिन ये खबर कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से टैंकर्स को फिर से गुजरने की अनुमति देगा ऑस्ट्रेलिया में लोगों के लिए राहत की एक उम्मीद लेकर आई है। इन घटनाओं के बावजूद सीजफायर के स्कोप को लेकर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि इसराइल ने प्रमुख पाकिस्तानी मीडिएटर्स की बातों का खंडन करते हुए कहा है कि लेबनन में हो रही झड़पें इसके दायरे में शामिल नहीं हैं, और अगर सीजफायर बना भी रहता है तो भी पेट्रोल पंप पर राहत मिलने में कई हफ्ते लग सकते हैं। पीटर खोरी NRMA यानी नेशनल रोड एंड मोटरिस्ट एसोसिएशन हेड ऑफ मीडिया हैं, कहते हैं
We need to remember that service stations today are still selling fuel that they bought at record highs, so it will take time for that to flow on. We also want to make sure that the cuts in the excise are passed on in addition to any falls in wholesale prices that may appear in the coming days.
मिडिल ईस्ट के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को युद्ध के दौरान दोनों पक्षों द्वारा नुकसान हुआ है, इसके कारण भविष्य में प्रोडक्शन पर असर पड़ सकता है। क्वींसलैंड के प्रीमियर डेविड क्रिसोफोली सरकार से डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने की अपील कर रहे हैं और एक नए ऑयल फील्ड को फास्ट ट्रैक करने की मांग कर रहे हैं, जो पिछले 50 साल में पहली नई मंजूरी होगी।
together we can work towards getting this rolling. And there really is, it's a sea of opportunity for us here in Queensland and in the country. And we have seen in recent times that we're at the end of a supply chain of a global level, and it really does leave us vulnerable.
Fuel ki qeematon mein uchhal se sabse adhik prabhavit hone wale logon mein Australian truckies shamil hain, aur wo apni ladai Fair Work Commission tak le ja rahe hain. Wo chahte hain ki retailers, manufacturers aur mining companies fuel ki lagatar badhti qeematon ka adhik bhar uthayein. Transport Workers Union ke National Secretary Michael Kane ne kaha,
unless we grab this crisis by the scruff of the neck and deal with it, then road transport is going to come to a grinding halt.
Dheeraj Kumar, jo Melbourne mein full time cab chalate hain, fuel ki badhti qeematon par kehte hain,
to fuel cost ka dekho seedha asar hai bhai. Petrol abhi $2.23-29 pe hai, aur Ubers ke rate already pehle hi bahut zyada down the hai na, driving ke. Uber laga lo, taxi laga lo, truck driving laga lo. तो मतलब के ड्राइवर्स 10 टू 12 आवर काम कर रहे हैं और हार्डली मेकिंग लाइक $200, यू नो. उसके अंदर वो जीएसटी पे कर रहे हैं, उसका ऑल एक्सपेंस है. मतलब वो इसको कैसे सर्वाइव करेंगे? गवर्नमेंट कहती है कि उन्होंने मतलब वो दिया है टैक्स का जो है, मतलब उसके ऊपर फ्यूल पे, तो उसका कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं है ड्राइवर को. ऑलरेडी मतलब एक्सपेंसेस आर वेरी हाई, है ना.
वो आगे बताते हैं कि इस दौरान कस्टमर्स और कैब बुकिंग्स में भी गिरावट आई है.
कस्टमर्स के नंबर कम है, कुछ तो हॉलीडे का है, काम थोड़ा क्वाइट है, और कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है 1 month के लिए, उसका भी असर है. क्योंकि कल मैंने काम किया जैसे, तो 7-8 घंटे में $60 बने हैं. मतलब वहाँ गाइड ही नहीं है बिल्कुल, काम ही नहीं है बिल्कुल. तो मतलब ड्राइवर इस सिचुएशन के अंदर, मतलब मैं ड्राइव करके एयरपोर्ट पे गया काम करने के लिए, तो पहले वहां पे वेट किया 2 घंटे के लिए. मतलब के 2 घंटे के बाद राइड आती है कि $30 की राइड है, आप सिटी लेके जाते हो उसको, तो $30 में आप कैसे सर्वाइव करोगे? जब पेट्रोल $2.20 है, 23 सेंट है, तो उसके अंदर से आप पेट्रोल निकाल दो, उसके अंदर जीएसटी निकाल दो, तो आपको $10 भी नहीं बचते एक राइड के अंदर 2 घंटे में काम करने. ये तो एक्सप्लोइट किया जा रहा है ना ड्राइवरों को बैटली. हमने कम से कम 15 प्रोटेस्ट हम कर चुके हैं एयरपोर्ट के ऊपर. मतलब क्या ये अथॉरिटीज को नहीं पता कि ड्राइवर्स का शोषण हो रहा है?
ऐसे में फुल टाइम कैब ड्राइवर्स के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में बढ़ते खर्चों को संभालना कितना मुश्किल हो रहा है, इस पर धीरज कुमार ने बताया,
इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है जी. बच्चे मेरे अभी छुट्टी हैं, स्कूल हॉलीडे हैं, हम बच्चों को हॉलीडे पे कहीं नहीं लेके जा सकते. बच्चे पूछते हैं कि हमने ट्रैवल करना है. एज अ पेरेंट्स हम उनको क्या बताएं कि हम किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं? उन छोटे छोटे बच्चों को हम कैसे समझाएं? लोग कहते हैं कि व्हाई नॉट चेंज द जॉब. मतलब के लोगों को कमेंट करने आते हैं, पर मतलब तुम इस चीज को करके देखो. 60 किलोमीटर इंटरसिटी ट्रिप, उबर इज पेइंग $27. उस $27 में से ड्राइवर ने जीएसटी भी पे करना है, सब कुछ पे करना है. तो उस और राइडर कहां से उठाना है? 30 किलोमीटर से. 30 किलोमीटर पहले उसको उठा के लेके आना है, उसके बाद 60 किलोमीटर उसको छोड़ना है, $27. आप मतलब क्या लगता है कि ड्राइवर को क्या बचेगा इसमें से?
इसी बीच सरकार इंटरनेशनल पार्टनर्स से सप्लाई मजबूत करने के अपने अभियान को आगे बढ़ा रही है. चीन के प्रीमियर ली चियांग से फोन पर बातचीत के बाद प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी सिंगापुर जा रहे हैं. साथ ही डिफेंस मिनिस्टर रिचर्ड माल्स जापान के लिए रवाना हो रहे हैं. SBS न्यूज की टीम मिशेल और रयान टैमर के सहयोग से SBS हिंदी पर यह रिपोर्ट आपके लिए प्रस्तुत की नबील हसन ने. इस ऑडियो पॉडकास्ट में व्यक्त किए गए विचार व्यक्तिगत हैं, SBS ना तो इनसे सहमत है और ना ही असहमत.
तो आपने ये रिपोर्ट सुनी और चाहूंगी कि आप भी अपने कुछ विचार हम तक साझा करें. यानी आपको नंबर तो याद ही है ना हमारा 04397997677 पर. और अभी एक समय हुआ है एक छोटे से अंतराल का, मिलती हूँ इसके बाद में. SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूं मैं अनीता बरार. श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे हम बात करेंगे नेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन अभी पहले बात करते हैं भारत की. जी हां, आपने बिल्कुल ठीक समझा. अभी भारत के समाचार क्या हैं ये आपके लिए लाए हैं हमारे संवाददाता विश्वरत्न, और सुनिए ये रिपोर्ट.
पश्चिम एशिया में लगातार बदलते हालातों पर भारत सरकार की पैनी नजर है. खाड़ी देशों के साथ भारत का संपर्क बना हुआ है. विदेश मंत्री एस जयशंकर कल यानी शनिवार को संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर जाएंगे. उनके दो दिवसीय दौरे का लक्ष्य दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ाना है। खाड़ी के अन्य देशों के साथ भी भारत का उच्च स्तरीय संपर्क बना हुआ है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी फिलहाल कतर के दौरे पर हैं। भारत की इस पहल को ऊर्जा सहयोग को मजबूती देने वाला बताया जा रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल इन यात्राओं के बारे में जानकारी देते हुए कहते हैं,
वी आर क्लोजली फॉलोइंग द डेवलपमेंट्स इन वेस्ट एशिया। वी कंटिन्यू टू एंगेज विद कंट्रीज इन द रीजन। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर विल पे एन ऑफिशियल विजिट टू द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स फ्रॉम 11th टू 12th अप्रैल 2026। During the visit, he will meet the leadership of the UAE to review close cooperation and deepen the comprehensive strategic partnership between the two countries. We are also reaching out to other countries in the GCC region. Our Minister of Petroleum is also visiting the region. As you would have seen, he is paying an official visit to Qatar on 9th and 10th April 2026.
पश्चिम एशिया संकट के चलते फार्मा सेक्टर को भी परेशानी उठानी पड़ी है। औषधि विभाग में संयुक्त सचिव सत्य प्रकाश टीएल ने सप्लाई चेन के बाधित होने की बात कही। दवा उत्पादन में रुकावट को दूर करने के लिए सरकार अन्य उद्योगों के साथ समन्वय में काम कर रही है। सत्य प्रकाश टीएल इस बारे में बताते हैं,
फार्मास्यूटिकल सेक्टर हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग value chain linkage with the petroleum and petrochemical sector, particularly in the supply of critical feedstocks and solvents, which are used for manufacturing of drugs and syrups. In view of this interdependence, the government is working in close coordination with the Ministry of Petroleum and Natural Gas and the Department of Chemicals and Petrochemicals so that uninterrupted supply of essential pharma inputs is ensured.
उन्होंने बताया कि दवाओं की कीमतों में संभावित वृद्धि को रोकने के लिए कस्टम ड्यूटी को हटा दिया गया है। केरल, असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। गुरुवार को हुए वोटिंग में रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया। पूर्वोत्तर राज्य असम में अब तक का सबसे ज्यादा मतदान देखने को मिला। चुनाव आयोग के अनुसार यहाँ मतदान का प्रतिशत 85 को पार कर गया। 10 साल से सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी इसे सरकार के पक्ष में होना बता रही है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मतदाताओं के उत्साह के पीछे सरकार के अच्छे कामों को जिम्मेदार बताया। वहीं कांग्रेस पार्टी के गौरव गोगोई भी इसे अच्छा संकेत बता रहे हैं।
आज असम के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। असम के लोग, असम के भविष्य के निर्णायक भूमिका लेने वाले व्यक्ति, समाज आज आगे आए हैं। लोग के बीच में जो उनकी, लोगों के बीच में जो उनकी मुस्कान देख रहा हूं, लोगों के आंखों में जो आशा देख रहा हूं, लोगों की आवाज में जो बुलंदी आ रही है, लोग जिस प्रकार से निर्भय होकर अपनी बात रख रहे हैं, मेरा पूरा विश्वास है एक सशक्त, सबल और एक नए असम हमको आने वाले 4 तारीख को दिखाई देगा।
दक्षिणी राज्यों केरल और पुडुचेरी में भी मतदान के प्रति लोगों में उत्साह देखने को मिला। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में लगभग 90% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं केरल में लगभग 78% मतदाता घरों से निकले। पिछले 10 सालों से वाम मोर्चे की यहां सरकार है। एलडीएफ नेताओं को उम्मीद है कि इस बार भी जनता का आशीर्वाद उनकी ही पार्टी को मिलेगा। वहीं तेजी से अपना प्रभाव बढ़ा रही भाजपा को भरोसा है कि इस बार विधानसभा में उसकी जोरदार आवाज होगी। वैसे कांग्रेस पार्टी को भी उम्मीद इसी राज्य से है। कांग्रेस की अगुवाई वाला यूडीएफ इस बार सत्ता में आने का दावा कर रहा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर इस बारे में बताते हैं,
वेरी प्लीज टू सी वी हैड अ वेरी गुड टर्नआउट। दिस लुक्स लाइक एन इलेक्शन where the Kerala voters are coming in large numbers to vote, and that's a very good sign. It means that the people of Kerala are not leaving it to the political activists and cadres to come and decide. They are actually deciding to take their future, their destiny, their fate into their own hands. And to my mind, that is a very good sign for the UDF. It means people are voting for change. and that change can only be the replacement of the 10 years of LDF misrule with a UDF government.
और अब चर्चा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की। 23 और 29 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए प्रचार का काम तेज हो गया है। गुरुवार को भाजपा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल सरकार पर उन्होंने कई आरोप लगाए। बीरभूम की एक सभा में उन्होंने मां माटी और मानुष के सहारे सत्ता की सीढ़ी चढ़ने वाली टीएमसी को घेरा।
टीएमसी के महाजंगल राज ने एकदम उल्टा कर दिया। ये मां माटी और मानुष की बात करते थे, लेकिन मां आज रो रही है। माटी पर घुसपैठियों का कब्जा हो रहा है और मानुष भयभीत है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है।
टीएमसी का आरोप है कि भाजपा सांप्रदायिक आधार पर मतदाताओं को बांटने की कोशिश कर रही है। वहीं राज्य में मछली भी एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। टीएमसी का आरोप है कि भाजपा सत्ता में आती है तो बंगालियों को मछली मांस खाना भी दुभर हो जाएगा। टीएमसी के इन आरोपों पर भाजपा ने पलटवार किया है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि टीएमसी सरकार बंगाल को ढंग से मछली भी नहीं खिला पा रही है। इन आरोप प्रत्यारोप को देखकर तो यही लगता है कि आने वाले समय में खानपान के साथ साथ अगर भाषा और पहनावा को लेकर भी वार पलटवार होने लगे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्व रत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।
तो श्रोताओं, आपने भारत की रिपोर्ट तो सुनी। आज आपसे जानना चाहती हूँ कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में एक वेव रॉक करके जगह है, क्या आप जानते हैं कि ये कहाँ पर है और ये वेव रॉक क्यों कही जाती है? सोचिएगा इसके बारे में और हमें अपना संदेश भेजिएगा 04397997767 पर। और अभी समय हुआ है एक अंतराल का। SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूं मैं अनीता बरार। श्रोताओं, ऑस्ट्रेलिया के ना ही केवल शहरों बल्कि दूर दराज के इलाकों में भी सिनेमा की झांकी तो दिखी जाती है और अब जो है वहां पर बॉलीवुड की फिल्में भी देखने को मिलने लग गई हैं। तो ऐसे में एक नेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इसकी पहुंच सब जगह हो रही है। इस फेस्टिवल की शुरुआत जिलोंग में हुई और अब ये सिडनी में शुरू हो रहा है। तो इसके संस्थापक हैं अनुपम शर्मा, तो आइए उनसे जानते हैं कि क्या है ये उत्सव और क्या ऑस्ट्रेलिया में इसकी आवश्यकता है। सुनते हैं ये बातचीत, आपके लिए प्रस्तुत कर रही हैं इसे वृषाली जैन।
दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में नेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया यानी नीफा मनाया जा रहा है और इसको ऑस्ट्रेलिया का पहला नेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल बताया जा रहा है, जो कि कई शहरों में भी होगा और दूरदराज के इलाकों में भी होगा। औचित्य यही है कि इंडियन सिनेमा को ऑस्ट्रेलिया में सेलिब्रेट किया जाए। और इस पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुपम शर्मा, जो कि इंडियन ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर हैं। आपने उनकी कई फिल्में देखी हैं, वे कई फिल्म स्क्रीनिंग्स के साथ जुड़े हुए हैं, कई पैनल्स के साथ जुड़े हुए हैं, कई फिल्म फेस्टिवल्स के साथ जुड़े हुए हैं और खास फेस्टिवल पर चर्चा करने के लिए आज SBS हिंदी से जुड़ रहे हैं। तो अनुपम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है SBS हिंदी पर।
नमस्कार वृषाली, आप धन्यवाद, आपको और आपके सभी सुनने वालों को। मैं आज नहीं जुड़ रहा हूँ, मैं 30 साल पहले SBS से जुड़ा था। मेरा पहला पेचेक जब मैं फिल्म विद्यार्थी था SBS से आया था, तो जब भी SBS से बात होती है ऐसा लगता है परिवार में वापस आ गया हूँ।
सबसे पहला सवाल तो मेरा ये रहेगा अनुपम जी कि नीफा के साथ ऐसा कौन सा गैप था जिसको भरने की कोशिश की गई है?
देखिए, ऐसा है वैशाली कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो फिल्म संपर्क है वो अब एक अलग ही मुकाम पे पहुंच गए हैं। हमारे बीच अब एक को प्रोडक्शन ट्रीटी हो गई है, करीब 90-95 मिलियन डॉलर्स की भारत से रिलेटेड फिल्में हैं जो कई पड़ाव पे हैं, मेनली डेवलपमेंट के पड़ाव पे, जिनको स्क्रीन ऑस्ट्रेलिया, स्क्रीन क्वींसलैंड, स्क्रीन कैनबरा से डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट मिला है। आप जानती ही हैं कि भारतीय समुदाय इस वक्त ब्रिटेन के बाद सबसे बड़ा समुदाय बन गया है। तो इतने सब तथ्यों के रहते कोई राष्ट्रीय स्तर पे ऐसा फिल्म समारोह नहीं था जो हमारी कम्युनिटी, हमारे कल्चर और हमारे सिनेमा को एड्रेस करे, उनको सेलिब्रेट करे। फिल्मों को सही मायने में उनका सदुपयोग करना एक प्लेटफॉर्म के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर बहुत जरूरी हो गया था, और यही कारण है कि पिछले साल हमने इसका उद्घाटन किया। हमको इतना स्नेह मिला, इतना प्रोत्साहन मिला कि इस साल अब हम आ रहे हैं करीब 14 शहरों में, जैसा कि आपने बताया उसमें दूर दराज के एरिया भी हैं, ब्रोकन हिल है, एलिस स्प्रिंग्स है। ये अब एक नेशनल प्लेटफॉर्म बन गया है जिसमें आजकल जो एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट्स चल रहे हैं उनके रहते सहयोग और इंक्लूसिव और कल्चरल और रोबस्ट कॉन्वर्सेशंस कर सकते हैं अपने भारतीय समुदाय के इर्द गिर्द। मेरी जो टीम, जैसे फराबी कबीर हैं, रौनक हैं जो हमारी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं, वो जब भी मैं निराश होता था वो बोलती थी कि नहीं अनुपम, इसकी बहुत जरूरत है और ये अब साबित हो रहा है धीरे धीरे, और हर स्टेट से हमको कुछ ना कुछ सहयोग मिल रहा है। विक्टोरिया से आपकी जो मुख्यमंत्री हैं जेसिंटा एलन, उन्होंने बड़ा प्यार भरा संदेश दिया। नॉर्दर्न टेरिटरी, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स, हर जगह से प्रोत्साहन मिल रहा है। अब कहते हैं ना, कारवां चलता रहा, बढ़ता रहा, तो हम इसे बढ़ाते जा रहे हैं।
एक बड़ा दिलचस्प ऑब्जर्वेशन मेरा ये रहा, जैसे मेलबर्न इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की अगर हम चर्चा करें, उसमें भी कई हिंदुस्तानी फिल्में स्क्रीन करी जाती हैं, लेकिन वो एक सिटी में बेस्ड है। क्यों जरूरी लगा ये अलग अलग शहरों में ले जाना और खासकर रीजनल एरियाज में लेकर के जाना अनुपम जी?
तो मेलबर्न इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है आप, वो सारे देशों की फिल्में दिखाता है, कई साल हो गए हैं, दुनिया का काफी नामी ग्रामी फिल्म फेस्टिवल है। वो अपनी फिल्में दिखाते हैं, उनका अपना अलग एजेंडा होता है। हमारा जो नेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, इसका एक प्रमुख उद्देश्य ये है शाली कि आप और हम जो भारत से बाहर आके ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, पिछले कुछ सालों में थक से गए हैं एक ही दृष्टिकोण की फिल्में भारत से देखें, जिसे आप अंग्रेजी में कॉलोनियल गेज। तो इसीलिए हमारा पहला उद्देश्य निफा से ये था कि हम भारतीय सिनेमा को सेलिब्रेट करें। फिर हमारा एक और उद्देश्य था कि हम बॉलीवुड से थोड़ा हटेंगे, बॉलीवुड की फिल्में तो देखते रहते हैं आप। हमारा उद्देश्य था वो फिल्में हम पहली बार ऑस्ट्रेलिया में बड़े पर्दे पर दिखाएंगे जो पहले कभी देखी नहीं गई हैं, नई हैं, उच्च कोटि की हैं, अच्छी कहानियां हैं। इसीलिए हमने एक नॉमिनेशन काउंसिल तैयार की जिसमें काम काजी जो महिलाएं हैं फिल्म जगत में जो काम करते हैं, आपके मेलबर्न से अलीशा और अचला हैं, वो उन सब लोगों ने नॉमिनेट की फिल्में। इन सब का सार निकाल के हमारे पास 32 फिल्में हैं जो ऑफिशियल सिलेक्शन में हैं, 18 विभिन्न भाषाओं में हैं इंडिया की, और सारी ऑफिशियल सिलेक्शन की फिल्मों का ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल या वर्ल्ड प्रीमियर। और इसमें हमारा साथ दिया नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने, जिन्होंने हमें कई फिल्में मुहैया करवाई। जैसा कि आपने प्रश्न पूछा था राष्ट्रीय स्तर पे क्यों जरूरी है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं एलिस स्प्रिंग गया कुछ वार्तालाप के लिए, वहाँ एरलन आर्ट सेंटर है जिनके साथ हम एलिस स्प्रिंग का संपादन कर रहे हैं इस फिल्म फेस्टिवल का। वहां पे मेरे को एक टैक्सी ड्राइवर ने उठाया जो केरला से था, वो इतना खुश हो गया कि हम पहली बार मलयालम फिल्में बड़े पर्दे पर ला रहे हैं जो यहाँ अक्सर कोई रिलीज नहीं होती है। मेरे को वापस एयरपोर्ट छोड़ने एक सरदार जी गए जिन्होंने मुझसे पैसे लेने से मना कर दिया क्योंकि मैं भारत की फिल्में ला रहा हूँ। हम ये भूल जाते हैं मेलबर्न सिडनी में कि दूर दराज के एरियाओं में कितने भारतीय समुदाय के लोग बहुतायत में हैं, ना सिर्फ फिल्में नहीं देख पाते बल्कि उन्हें ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसमें वो अपने सिनेमा, अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को अपने ऑस्ट्रेलियन पड़ोसी से शेयर करें। कि सिड वशिष्ठ हैं, पहले इंडियन बॉर्न मेयर हैं आउटबैक टाउन के, टेनेंट क्रीक के मेयर, बोला अनुपम आप 2-3 फिल्में दिखा देंगे ओपन एयर में मेरे को, तो मैंने कहा स्वागत है आपका। तो ये भी कारवां है जो चल रहा है, और ये रिएक्टिव ज्यादा है, प्रोएक्टिव कम है।
थोड़ा सा रीजनल के बारे में और बात करते हैं, ये तो हुआ जहाँ से न्योता आया है, ऑडियंसेस के बारे में चर्चा करते हैं, किस तरीके का रिसेप्शन रहा है, आप क्या वहाँ की कम्युनिटीज के साथ भी इंटरेक्ट कर पाए हैं?
कम्युनिटीज के साथ तो बिल्कुल इंटरेक्ट किया है। हम आप भारतीय समुदाय के लोग तो घराती हैं, हमें बरातियों को बुला, जो गैर भारतीय समुदाय के लोग हैं हमें उनको बुलाकर अपनी फिल्में दिखानी है।
कितनी खूबसूरत बात कही है आपने।
हाँ, तो आप और हम तो हिंदी फिल्मों की चर्चा कर ही सकते हैं, आप भी वहीं से हैं, मैं भी वहीं से हूँ, लेकिन बहुत जरूरी है मेरे लिए कि निजी तौर पे, व्यावसायिक तौर पे, कि जो भारतीय नहीं है उनको मैं अपनी संस्कृति, अपनी फिल्में, अपने दृष्टिकोण के बारे में बताऊं। उसी से हम एक इंक्लूसिव सोसाइटी बना सकते हैं। कि मैं अपने गैर भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियन भाइयों बहनों को बोलता हूँ, चांसेस हैं कि 4 या 5 में से एक पड़ोसी आपका भारतीय मूल का होगा। तो अगर आपको उनको जानना है, एक हारमोनियस सोसाइटी बनानी है, तो उनकी सिनेमा, उनकी संस्कृति के बारे में जाने, और सिनेमा से कोई बढ़िया माध्यम ही नहीं है किसी की संस्कृति जानने।
और अनुपम, क्या निफा में ऐसी भी कोई प्रक्रिया है जहां पर स्थानीय क्रिएटिव कम्युनिटीज जो हैं या फिर जो उभरते हुए फिल्म मेकर हैं वो भी हिस्सा ले सकते हैं?
बिल्कुल, हमारी वर्कशॉप्स हैं। इस साल हमने वर्कशॉप्स रखी हैं भारतीय मूल के, गैर भारतीय मूल के लोकल कम्युनिटी लोगों के लिए, कि वो किस तरह, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो इतना हाइपर एक्टिविटी और ये फिल्म्स और आर्ट में, उसका सदुपयोग कैसे कर सकते हैं। हम जून में फेसेस टू वॉच सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हम उन भारतीय चेहरों के बारे में समुदाय को, ऑस्ट्रेलिया मेन स्ट्रीम को, दुनिया को बताएंगे जिन पे हमें नजर रखनी चाहिए। इसमें चाहे वो आर्यन शर्मा हो, जो अभी नोएडा के आई थिंक फर्स्ट भारतीय मूल के फुल टाइम एक्टर हैं, या शानू शर्मा हो जो ऑपेरा सिंगर हैं, तो हम इन लोगों के ऊपर एक फोकस रखेंगे। तो इसका भी प्लान है, हम पैनल कर रहे हैं सीरीज जिसका नाम है एबल एंड डाइवर्स, जिसमें हम डिसेबिलिटी और फिजिकली चैलेंज्ड जो लोग होते हैं उनका विभिन्न संस्कृतियों में, भारतीय संस्कृति में, फर्स्ट नेशन संस्कृति में, ऑस्ट्रेलिया में, और उन सिनेमाओं में किस तरह उनका प्रदर्शन होता है, क्या ट्रीटमेंट होता है, वो कर रहे हैं।
निफा का जो ये एक्सपेंशन आपने रीजनल ऑस्ट्रेलिया को किया, मैं रीजनल ऑस्ट्रेलिया इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम जानते हैं कि बड़े शहरों में इंडियन सिनेमा को लेकर के एक मोटी मोटी समझ आ रही है, पहचान तो आ ही रही है, समुदाय बड़े हैं, लेकिन रीजनल्स का पूरा एक जो कॉन्वर्जेशन है, जो एक व्याकरण है, वो अलग हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि निफा जैसे और फेस्टिवल्स के लिए भी, या उस तरीके की एक स्पेस क्रिएट करने के लिए भी, किस तरीके की पार्टनरशिप जरूरी है?
देखिए, पार्टनरशिप्स और जो सहयोग मिल रहा है वो तो इस वक्त बड़े सटीक स्तर का मिल रहा है। मैं उदाहरण देता हूँ, पिछले साल हमने डबो से शुरुआत की, तो डबो की ऑरिस्कॉन जो सोसाइटी है, इंडियन ओरिजिन लोगों की, उनका सहयोग रहा, वहाँ के मेयर का सहयोग रहा। अभी हम ब्रोकन हिल में जा रहे हैं, ब्रोकन हिल में राडो है, और एलिस स्प्रिंग में एरलन आर्ट सेंटर है, उनका सहयोग है। इतना कुछ सीखने को मिल रहा है इस सहयोग से। मुझे नहीं पता था कि भारतीय मूल के टीचर बहुत बहुतायत में हैं एलिस स्प्रिंग में, क्योंकि उनका एक स्पेशल बॉन्ड है फर्स्ट नेशन और एबोरिजिनल स्टूडेंट्स के साथ, तो वहां इन लोगों का सहयोग मिल रहा है। रीडिंग सिनेमा है, डेंडी सिनेमा है। हम एक चीज भूल जाते हैं कि जब सपोर्ट सरकार से मिलता है, उसके अलावा कॉमर्शियल एंटिटीज हैं, उनके लिए इस वक्त भारतीय सिनेमा का प्रदर्शन एक बहुत ही, जिसे आप प्रॉफिटेबल कह सकते हैं, वो है। क्योंकि मुझे पता नहीं, 2 महीने पहले खबर आई थी कि ऑस्ट्रेलिया उन चुनिंदा देशों में से है जहां पे भारतीय फिल्मों का बॉक्स ऑफिस ऑस्ट्रेलियन फिल्मों से ज्यादा है। जैसा कि मुस्कुरा के मैं अपने कुछ थिएटर दोस्तों से बोलता हूं कि आपको सडनली ओवरनाइट आपको प्यार नहीं हो गया भारतीय संस्कृति से, ये डॉलर बोल रहा है। अब धुरंधर आ रही है, पहले और फिल्में आई, पंजाबी फिल्में 1-1 मिलियन कमा जाती हैं वीकेंड में। अब आप देखिए, उस 1 मिलियन में से आधा पैसा थिएटर्स के पास जाता है, तो ये थिएटर्स भी टैप करना चाह रहे हैं भारतीय समुदाय को। तो अगर आप संक्षिप्त में मैं बताऊं, तो ये भारतीय समुदाय की जो शक्ति है, सांस्कृतिक शक्ति, वित्तीय शक्ति, ये उन सब का सदुपयोग करने के, क्योंकि अभी तक जैसे आप अंग्रेजी में बोलते हैं वो सब अनटैप्ड है हमारा कमर्शियल पोटेंशियल, तो ये फेस्टिवल उन सबको टैप कर रहा है और सब लोग जुड़ते जा रहे हैं। पर्थ में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन बुडाडूप म्यूजियम जुड़ा है, डार्विन में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का जो म्यूजियम है वो जुड़ा है, नेशनल लाइब्रेरी जुड़ रही है, तो ये सब सांस्कृतिक जितने आपके बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं ये जुड़ रहे हैं। और वैशाली, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब आप एक सो कॉल्ड एथनिक फिल्म फेस्टिवल देखते हैं, लेकिन उसमें आप डेंडी सिनेमा, रीडिंग सिनेमा, NDTV, ये बड़े बड़े मेनस्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशंस का सपोर्ट देखते हैं, यू फील इंक्लूडेड। आपको लगता है कि ये कोई एथनिक इवेंट नहीं है, ये हम लोगों का आदर सत्कार हो रहा है, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस आके इसको सपोर्ट करें। तो मैं भी नया माइग्रेंट था 25-30 साल पहले, आप भी माइग्रेट की हैं। जब एक नए माइग्रेंट को अपनी संस्कृति का कोई समारोह इतनी मेनस्ट्रीम सपोर्ट के साथ दिखता है तो जो सेंस ऑफ इंक्लूसिविटी होती है वो बहुत प्रेशियस होती है। कितनी ईमेल्स आ रही है हमारे पास विशाली कि हम किस तरह सहयोग कर सकते हैं, तो हम सबको जोड़ के हम ये अपनी बारात ले जा रहे हैं। एलिस स्प्रिंग से एक लड़की का फोन आया, वो गाना गाती है, सो वो हमारी ओपनिंग सेरेमनी में गाना गा रही है।
बर्थ
में प्रतीक और इप्सा करके दो यंग प्रोड्यूसर्स हैं, वो हमारे प्रोड्यूसर्स बने हैं, तो वो अपना टैलेंट रैपिंग दिखा रहे हैं। तो सबका स्वागत है क्योंकि ये हम सबका प्लेटफॉर्म है।
तो अनुपमा जी, आपने इतना समय निकाला और हमको इतनी सारी जानकारी दी, उसके लिए बहुत शुक्रिया।
आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जैसे कि अंग्रेजी में बोलते हैं, सी यू ऑल एट द थिएटर्स टू वॉच एन इंडियन फिल्म ऑन बिग स्क्रीन।
तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे ये जानकारी कि यहाँ पर किस तरह से इंडियन फिल्म फेस्टिवल जो राष्ट्रीय स्तर पर है वो हो रहा है, और आपको क्या उम्मीदें रहती हैं ऐसे फेस्टिवल से। बातचीत तो आपने सुनी है, उसमें कई बातें आई सामने, लेकिन आप किस तरह की फिल्में देखना चाहते हैं, क्या आपका आपकी चाहना होती है कि क्या क्या देखने को मिले। कुछ ऑफ बीट फिल्में होती हैं, कुछ दूसरी भाषाओं की फिल्में होती हैं, तो आप जो भी सोचते हैं अवश्य हमारे साथ साझा कीजिए, और मिलती हूँ इस अंतराल के बाद। SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम, और आपके साथ हूं मैं अनीता बरार। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपसे पूछा था कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है, एक जगह क्या एक चट्टान है जिसको वेव रॉक कहा जाता है, और ये बहुत ही मशहूर है और बड़ी खूबसूरत सी जगह है, काफ़ी ऊंची है, और उसको देखने से ऐसे लगता है कि जैसे समुद्र की कोई लहर आ गई है। आपसे जानना चाहती थी कि क्या इसके बारे में आपको कुछ जानकारी है, कहाँ पर है ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, कितनी दूर है, बस कुछ इसी तरह की जानकारी अगर आपके पास है तो मुझसे साझा कीजिएगा। इसके बारे में तो कभी आगे कार्यक्रम में बात अवश्य करूंगी, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहां पर आप जा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में और उसे देख सकते हैं। लेकिन अभी चलते हैं भारत की तरफ, और एक ऐसी चीज के बारे में जानकारी आपको दे रही हूं। कुछ समय पहले आपने ये शायद सुना हो, लेकिन सोचा कि ये अपने आप में एक अनोखी सी बात है, तो क्यों ना उस जानकारी को आप तक पहुंचाया जाए। तो प्रस्तुत है ये अंश। SBS हिंदी पर मैं हूं आपके साथ अनीता बरार। भारत रहस्यों का देश है, और आश्चर्य होता है कि ये धारणा कहां से आई। सच तो ये है कि भारत में ऐसे कई रहस्य हैं जो अपनी सबसे विचित्र जगहों में गहराई से दबे हुए हैं, जिनके बारे में जानकर लोग या तो चौंक जाते हैं या फिर घबरा जाते हैं। कारों को खींचने वाली पहाड़ियों से लेकर पूजा की जाने वाली मोटर बाइक्स तक, भारत में बहुत सी असामान्य जगह हैं। कस्बों से लेकर मंदिरों और पहाड़ियों तक, इन बेहतरीन और अनोखी जगहों के बारे में आपकी बस कल्पना ही उड़ान भर सकती है। तो सोचा क्यों ना आज भारत की कुछ रहस्यमयी जगहों के बारे में बात करें, क्योंकि हो सकता है जब आप भारत जाएं, आप इन जगहों को देखना चाहें या उनके बारे में बताना चाहें और जानना चाहें। तो आइए चलते हैं भारत में उत्तराखंड की तरफ। उत्तराखंड के चमोली में है कंकालों की झील। जी हाँ, कंकालों की झील यानी रूपकुंड झील। हिमालय के सबसे निर्जन स्थान पर 16,500 फीट की ऊंचाई पर रूपकुंड झील स्थित है, और ये एक ग्लेशियर झील है। इतनी दूर और खतरनाक स्थान पर होने के कारण ये झील उदासी या निराशा का माहौल तो बिल्कुल ही नहीं बनाती है, लेकिन इसके नीचे जो है वो लोगों को डराता है। भारत के इस रहस्यमय स्थान पर जब बर्फ पिघलती है तो हर साल जमी हुई रूपकुंड झील की सतह के नीचे लगभग 300 से 600 कंकाल देखे जा सकते हैं। ये कंकाल इस झील के आसपास और बर्फ के नीचे बिखरे पड़े हैं, जिसकी खोज 1942 में गश्त कर रहे एक ब्रिटिश रेंजर ने की थी। रेडियो कार्बन परीक्षण और फोरेंजिक ने इसको 15वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का बताया है और स्थानीय लोगों का मानना है कि ये कंकाल कन्नौज के तत्कालीन राजा रानी उनके सिपाही दास दासियों के हैं जो तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, लेकिन भयंकर ओलावृष्टि के कारण झील में गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से ये बात कोई 870 साल पुरानी होगी। एक और अनुमान है, वो ये है कि ये एक कब्रिस्तान हो सकता है जहाँ किसी महामारी के शिकार लोगों को दफनाया गया हो। इस क्षेत्र के गांव में एक लोकप्रिय लोकगीत है जिसमें बताया गया है कि कैसे देवी नंदा देवी ने लोहे जैसी ओलावृष्टि की जिससे झील के पास से गुजर रहे लोगों की मृत्यु हो गई। अब यूं तो रूपकुंड झील दशकों से मानव वैज्ञानिकों के लिए कौतूहल का विषय है, लेकिन चट्टानों और बर्फ के खिसकने और यात्रियों के कारण इसके कंकालों की उत्पत्ति के बारे में बहुत कम जानकारी थी। वैज्ञानिकों ने इस साइट की जटिलताओं को देखते हुए ये पता लगाना मुश्किल माना कि कब और कैसे व्यक्तियों को दफनाया गया था। शुरुआत में ये अनुमान लगाया गया था कि ये अवशेष जापानी सैनिकों के थे जो इस क्षेत्र में घुस गए थे। अंग्रेजों की एक टीम ने इसकी जांच की तो पता चला कि ये जापानी सैनिकों के कंकाल नहीं हो सकते थे। अब कंकालों पर पहले किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि मरने वाले ज्यादातर लोग लंबे थे, अधिकतर की उम्र 35 से 40 के बीच में थी। कुछ बुजुर्ग महिलाएं थीं और सभी का स्वास्थ्य काफी अच्छा था। अब रूपकुंड झील की इस पहेली को सुलझाने में अनुवांशिक विश्लेषण काम आया है। भारत, अमेरिका और जर्मनी सहित 16 संस्थानों के 28 लेखकों को शामिल करते हुए 5 साल तक अध्ययन चला और इस नवीनतम अध्ययन में पाया गया कि ये सभी धारणाएं सच नहीं हो सकती हैं। ये रिपोर्ट 2019 में प्रकाशित हुई थी। भारत में बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेस के नीरज राय और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के डेविड रीच के नेतृत्व में शोधकर्ताओं ने दर्जनों कंकाल के नमूनों से डीएनए निकाला। विश्लेषण में 23 पुरुषों और 15 महिलाओं की पहचान की गई जिन्हें 3 अलग अलग अनुवांशिक समूहों में वर्गीकृत किया गया। दक्षिण एशियाई वंश वाले पहले समूह में 7वीं और 10वीं शताब्दी के बीच के व्यक्ति शामिल थे जो अलग अलग प्राचीनता वाले गैर समकालीन दफनाने का संकेत देते हैं। लगभग 1000 साल बाद 17वीं और 20वीं शताब्दी के बीच 2 अतिरिक्त आनुवंशिक समूह थे, एक पूर्वी एशियाई वंश से संबंधित था और दूसरा पूर्वी भूमध्य सागरीय वंश से जुड़ा जिसमें 14 व्यक्ति शामिल थे। तो क्या ये विविध समूह के लोग कुछ 100 वर्षों की अवधि में छोटे छोटे समूहों में झील की यात्रा करते रहे? उस स्थान पर कोई हथियार, अस्त्र या व्यापारिक सामान नहीं मिला। झील किसी व्यापार मार्ग पर भी स्थित नहीं है। नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित ये रिपोर्ट रूपकुंड झील के इतिहास की सूक्ष्म समझ प्रदान करती है। रूपकुंड जाते समय रास्ते में आपको केदारनाथ, चौखंबा, नीलखंड, त्रिशूल और नंदा घुंटी जैसी चोटियों के अद्भुत दृश्य दिखाई देते हैं। और हाँ, आपको ये भी बताती चलूं कि नेशनल जियोग्राफिक डॉक्यूमेंट्री है रिडल्स ऑफ द डेड स्केल्टन लेक। आपने ठीक समझा, इसमें बात है रूपकुंड झील की ही। ये तो बात थी कंकालों भरी झील रूपकुंड झील की। अब क्या कोई समुद्र तट इतना डरावना हो सकता है जहां पर धूप भी हो, रेत भी हो और आत्माएं हो? भारत के रहस्यमय स्थानों में शामिल है गुजरात के सूरत में डुमास बीच। इसकी एक खासियत ये है कि इसकी रेत भारत के अधिकतर समुद्र तटों से अलग है। रेत का रंग लगभग भयानक काला है।
इससे जुड़ी कई डरावनी कहानियां भी हैं और इसीलिए ये गुजरात की सबसे प्रेत बाधित जगहों में से एक है। प्रेत बाधित? जी हाँ, कहा जाता है कि समुद्र तट पर टहल रहे लोगों को फुसफुसाहट सुनाई देती है और जब वे इसके सूत्र की तलाश करते हैं तो वहां कुछ नहीं होता। समुद्र तट पर गायब होने की खबरें भी आती हैं। अब बताया जाता है कि इस समुद्र तट का इस्तेमाल हिंदू लोग शवों को जलाने के लिए किया करते थे, जो कि बहुत पुरानी बात है। तो माना जाता है कि ये मृतकों की आत्माओं से भरा हुआ है। यहाँ से सैर करते समय लोगों के गायब होने और डरावनी आवाजें आने की खबरें तो आती ही हैं। साथ में कहते हैं कि समुद्र तट के पास कुत्तों द्वारा रात भर भौंकते हुए सुना जा सकता है, क्योंकि कुत्तों को भूतों का आभास होता है। अच्छा, डुमास बीच अपनी भयानक परछाइयों के लिए भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही सूरज डूबता है चांदनी में छिपी आकृतियां उभरने लगती हैं। अब वहां पे लोगों ने बताया कि उन्हें ऐसी प्रेतात्माएं दिखाई देती हैं जो बड़ी आसानी से सामने आ जाती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। लेकिन स्थानीय लोग इससे सहमत नहीं हैं और इसे शहर और उसकी संस्कृति के बारे में एक संकीर्ण समझ बताते हैं। रेत का काला रंग, परछाइयां, फुसफुसाहट, कुत्तों की रात भर भौंकने की बात, शायद ये डुमास बीच के बारे में कुछ भूतिया कहानियों का एक कारण है और तभी इसे भारत के रहस्यमय और प्रेत बाधित स्थानों में से एक कहा जाता है। और इसी वजह से शाम ढलते ही डुमास बीच लगभग सुनसान हो जाता है। वैसे कहते हैं कि तट के पास एक शांत सैर करने के लिए ये जगह एकदम सही है। रहस्यमय जगहों, रहस्यमय बातों में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगली बार कुछ ऐसी ही और विचित्र जगहों की बात करेंगे। जी श्रोताओं, तो आपने ये जाना कि उत्तराखंड में जो कंकालों की झील है और गुजरात का ये बीच, क्या आपको इसके बारे में पता था? ऐसे ही कुछ और भी चीज़ें हैं जो समय समय पर आपके लिए हम लेकर आते ही हैं। और ये भी आपको बताती चलूं कि हमारे श्रोता एडिलेड से असद अहमद जी ने अब एक गाने की फरमाइश लिखी है। तो असद जी, इस समय तो वो गाना सुनवाना संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप हमारे कार्यक्रम के साथ बराबर जुड़े रहें तो हो सकता है कि आपको अगले कुछ दिनों में वो गाना सुनने को भी मिल जाएगा। कोशिश की थी मैंने ढूंढने की, लेकिन वो गाना अभी फिलहाल नहीं मिल सका। और हमारी श्रोता हेमलता पुरोहित जी का भी संदेश है, कार्यक्रम की सराहना आप करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। श्रोताओं, आपको इसी गाने के साथ छोड़े जा रही हूँ, लेकिन बताना चाहूंगी कि हमारे श्रोता बड़वाल जी का एक संदेश आया है और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि वो तो रूप कुंड के पास से ही रहने वाले हैं, तो कितनी ही अच्छी बात है। और उन्होंने उस जगह की तारीफ तो की है और जाहिर है पहाड़ों की तारीफ तो हमेशा ही होती है और नंदा राजदात का आयोजन वहाँ होता है हर 12 साल में, तो और भी उन्होंने कुछ जानकारी भेज दी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका बड़वाल जी। और अभी आप सब लोगों से अब मैं विदा ले रही हूँ, अगली मुलाकात तक के लिए अनीता बरार का नमस्कार।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।